I'm very honored to have Dr. Javed Ahmed Ghamadi on my program. Thank you so much, Ghamadi sahab, my program mein tashreef laane ke liye. Abhi maine doctors ko bhi dikhaya, ulama ki jo rai hai wo bhi, kuch ulama ki aur prime minister ki bhi. So agar pehle hame ye bata dein ki ek islamic state mein ya aisi state jo jahan pe zyada muslims ho deen ke hawale se, ऐसे मामलात के लिए डिसीजन मेकर कौन होता है? वो गवर्नमेंट होगी, इस मामले में एक्सपर्ट्स होंगे या रिलीजियस लीडर्स होंगे?
पहली बुनियादी बात यह है कि मसले की नौइयत क्या है, या मसला मजहबी है या मसला कोई तिब्बी नौइयत का है। हम में से हर शख्स इस बात से वाकिफ है कि एक मर्ज के फैलने का या उसके मुतद्दी होने का मामला मजहबी नहीं है। इसमें आखिरी राय तिब्बी माहिरीन की होनी चाहिए और उन्हीं की राय की बुनियाद पर तमाम फैसले करने चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मुझे या आपको इस मामले में कोई राय देने का सिरे से हक ही नहीं। ये तिब्बी माहिरीन बताएंगे कि किस नौइयत की तदाबीर करनी है और किस नौइयत की तदाबीर करने के नतीजे में हम इस आफत का या इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद किसने उस राय को कानून बनाना है या नाफिज करना है, वो रियासत का नज्म इज्तमाई है, जिसको हम जदीद इस्तलाह में गवर्नमेंट या हुकूमत कहते हैं। तो राय किसने देनी है, वो तिब्बी माहरीन ने देनी है। नफाज किसने करना है, वो हुकूमत ने करना है। इससे अगर कोई मजहबी पहलू वाबस्ता हो तो उसके लिए उलमा की राय ली जाएगी। अब मजहबी पहलू इसमें क्या है? मजहबी पहलू इसमें यह है कि अगर जान को खतरा लाहक हो जाए, जैसे कि तिब्बी माहरीन पूरे इत्मीनान और यकीन से कह रहे हैं, तजुर्बा हो चुका है कि इससे इंसानी जान खतरे में पड़ती है, और अगर ये इसी तरीके से शाये व जाये होता रहे, इसी तरह से फैलता रहे, तो ये बड़े पैमाने पर जाने लेने का बायस बन जाएगा। तो अब मजहबी सवाल ये पैदा होता है कि अगर जान को खतरा हो तो क्या इबादत उसी तरह जारी रखी जाएगी? इसका बिल्कुल वाज़े कैटेगोरिकल जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, और ये अल्लाह की शरीयत ही का बताया हुआ हुक्म है। यानी जिस वक्त जान को खतरा लाहक हो जाए तो आप फौरन दूसरी सूरत में चले जाएंगे, तीसरी सूरत में चले जाएंगे। मैंने उसकी मिसालें देकर बताया है कि जान को खतरा है, आप नमाज में तरह की रुख्सतें कुरान मजीद में देखते हैं, यानी अगर कोई अंदेशे की सूरत पैदा हो गई है, दो नमाजों को जमा कर लीजिए, आप कसर कर लीजिए, आप इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है तो फिर रिजाल रुकबाना, पैदल चलते हुए नमाज पढ़ लीजिए, सवारी पर बैठे हुए नमाज पढ़ लीजिए। यही सूरत हाल बाजमात नमाज की है। आम हालात में हमें मस्जिदी में जाके नमाज पढ़नी चाहिए, फर्ज नमाजी के लिए ये मस्जिदें बनाई गई हैं, ये अल्लाह की इबादत के घर हैं, इनको आबाद रहना चाहिए। लेकिन अगर इंसानी जान को खतरा लायक हो जाए तो फिर आपको घर में ही नमाज पढ़नी है। ये तो बहुत बड़ी चीज है कि इंसानी जान को खतरा हो जाए। इबादत के मामले में तो अल्लाह ताला ने यह हिदायत की है कि अगर मामला इंसान के तहम्मुल से बढ़ जाए, अब देखिए इसकी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मिसाल पेश आई वो ये थी कि शदीद बारिश हो गई तो फौरी तौर पर यह हिदायत की गई कि मुअज्जिन ये कहने की बजाय कि हय्या अलस्सलाह नमाज के लिए आओ, ये कहे सल्लू फी बुयूतिकुम, लोगों नमाज आज अपने घर ही में पढ़ लो। तो दीन में ये बात बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल तय है कि अगर किसी इबादत को करने में जरूरत से ज्यादा मशक्कत पेश आ गई, तहम्मुल से ज्यादा मशक्कत पेश आ गई, तो हम रुख्सत में चले जाएंगे। तो इसलिए इसमें तो दो राय थी नहीं, सारी दुनिया में अहले इल्म ने यही राय कायम की, इसी उसूल पर हरमैन बंद किए गए, इसी उसूल पर उम्रे पे पाबंदी लगाई गई, इसी उसूल पर ये चीज जेरे बहस है कि हज मनसूख कर दिया जाए। दुनिया भर में इबादत गाहें इसी उसूल के ऊपर बंद की गई, वो चर्च हो मस्जिदें हों, हर जगह एक ही कायदा है कि जब आप इंसानी जान को खतरे में देखें तो फौरन आप दूसरी सूरत में चले जाएं। बल्कि हमारे दीन में तो इबादत में इंसानी जान का खतरा तो बहुत बड़ी चीज है, अगर मशक्कत तहम्मुल से बढ़ जाए तो फौरी तौर पर दूसरी सूरत में चले जाना चाहिए।
गामदी साहब, उसके बावजूद पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया या गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो ये कि कुछ अरसे के लिए एसओपीस के साथ खोला जाएगा मस्जिद को और फिर इन पे अमल ना हुआ तो बंद कर दिया जाएगा। सो आपके ख्याल से ये डिसीजन का क्या नतीजा निकल सकता है? दूसरा, जो गवर्नमेंट का मौकफ है कि क्योंकि हम दीगर खोल रहे हैं जगह मसलन कंस्ट्रक्शन, तो हम रोक नहीं सकते मस्जिद में लोगों को आने से, योर आंसर टू दैट?
हमने तो जिस हद तक दुनिया को देखा है इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि लॉकडाउन या होगा या नहीं होगा। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो फिर हुकूमतों की सारी तवज्जो इस पर होनी चाहिए कि जिन लोगों की माश को इससे खतरा लायक होगा उनके लिए क्या करना है। यानी आप लॉकडाउन करने के बाद सारी तवज्जोहात इस पर मरकूज कर देंगे कि आप ये देखें कि अब हमने लोगों को राशन कैसे पहुंचाना है, भूखों मरने से कैसे बचाना है, फिर तवज्जो इस पर होगी। अगर आपने लॉकडाउन खोल दिया है तो वो असल में जुज़वी तौर पर नहीं खुलेगा, वो हर जगह खुल जाएगा। फिर आपकी सारी तवज्जो इस पर होनी चाहिए कि अस्पताल कितने बनाने हैं और मुर्दों को कैसे दफनाना है। इनके दरमियान की कोई चीज दुनिया भर में हो नहीं सकी। रह गई ये बात कि आप बाज जगहों को माशी जरूरतों के तहत खोलने के लिए मजबूर है, तो वहां पर भी जाहिर है कि आप ये देखेंगे कि आने वाले लोग क्या करते हैं, उसके क्या नतायज निकलते हैं, उन नतायज के लिहाज से आप फैसला करेंगे। और इसमें दुनिया चूंकि एक लंबे तजर्बे से गुजर चुकी है, इस वजह से आप नया तजर्बा करना चाहेंगे तो हर आदमी उस पर तनकीद करेगा। देखिए, इंग्लिस्तान में, चीन में, अमरीका में, हर जगह ये बात वाजे हो गई कि जहां लॉकडाउन को इस नौयत के तजब्जुब की सूरत हाल दरपेश हुई, वहां पर ये बिल्कुल एक सैलाब की तरह फैल गया और लोगों को रोकना नामुमकिन हो गया। तो ये तजुर्बात की चीज है, लेकिन मैं फाइनल और आखिरी बात ये कहूंगा कि ये फैसला भी असल में मुझे या आपको या किसी आलिम को नहीं कर रहा, ये फैसला तिब्बी माहिरीन को करना है। उनको बैठना चाहिए था, सारी गुफ्तगू उनसे होनी चाहिए थी।
ठीक, एक और मामला जो अब मुस्लिम सेंटिमेंट है, ऑब्वियसली जब काबा शरीफ को खाली देखा तो बहुत मुसलमानों के दिल दुखे, बहुत से लोगों की आंखें भीगी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किस्म की पिक्चर्स आई कि वहां कोई नहीं है। सो एक ये बात गर्दिश करने लगी कि अल्लाह ताला का शायद अजाब है, हमसे ये नेमत छीन ली गई है कि हम नहीं इबादत कर सकते मसाजिद में जाकर। इस पे आपकी क्या राय है, क्या इस तरीके से ये इस बात को हम समझे कि अल्लाह ताला का अजाब है?
इस दुनिया के अंदर इससे पहले भी बहुत वबाएं आती रही। अब तो हमें तारीखी तौर पर मालूम है कि कमोबेश 100 साल के बाद इस तरह की कोई ना कोई बड़ी वबा आ जाती है। 1918 और 20 के दरमियान स्पेनिश फ्लू में कई करोड़ लोग दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो इस तरह की वबाएं दुनिया में अब भी आती हैं, माजी में भी आती रही हैं। आप इसका अंदाजा इससे कर लें कि सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में ताऊन बड़े पैमाने पर फैल गया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कई बरस तक मिस्र में कहत पड़ा। तो क्या ये माना जाएगा कि उन हुक्मरानों की वजह से या उस माशरे की वजह से कोई अजाब आ गया था? अजाब का कानून बिल्कुल अलग है। अजाब अल्लाह ताला का जब आता है तो अल्लाह पहले अपना रसूल भेजते हैं, लोगों को उनकी गलत कारियों पर तवज्जो दिलाते हैं, उसके बाद जब अल्लाह की हुज्जत पूरी हो जाती है तो फिर नेकोकारों को कश्ती नूह में बिठाते हैं और बदकारों के ऊपर सैलाब आते हैं। तो अजाब का कानून ये है, ये अल्लाह की तंबीहात है। अल्लाह ताला तवज्जो दिलाते हैं बीमारियों से, तकलीफों से, वबाओं से, जलजलों से, तूफानों से कि मैं इस कायनात का नजम चला रहा हूं, मेरे मामले में गफलत में ना जाया करो, बेदार रहो, जागते रहो, और मौत की याद दहानी कराते हैं। इसलिए कि इंसान खुद फरामोश भी है, खुदा फरामोश भी है, वो मौत को भूल जाता है। तो ये तंबीह की चीजें हैं, दुनिया में इससे पहले भी होती रही हैं। हरमैन भी दसियों मरतबा इससे पहले बंद हुए हैं, हज पर भी पाबंदी लगी रही है। ये सब तारीखी वाकयात हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। हमारे लिए खुदा की सारी जमीन मस्जिद बना दी गई है اس وجہ سے اس طرح کی جذباتی باتیں کرنے کی بجائے دین کے اس حکم کو سمجھنا چاہیے کہ انسانی جان کو خطرہ ہوگا تو ہر چیز بند کی جائے گی, یہ دین کا حکم ہے, اس کا تعلق میرے یا آپ کے جذبات سے نہیں.
غامدی صاحب, ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ چاند دکھنے کے حوالے سے ہے. اس میں آپ کئی دفعہ یہ رائے دے چکے ہیں کہ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپرٹس کا کام ہے. ہم نے فرق یہ دیکھا کہ جو نئے وزیر آئے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, وہ بھی یہی بات انڈوس کرے ہیں بار بار. سو کیا یہ بھی دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ چاند دیکھنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام ہے یا علماء کا کام ہے؟
وہ چیزیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں وہ بار بار بتانی چاہیے, ہر موقع پر بتانی چاہیے. یہ ایک حقیقی بات ہے کہ چاند دیکھنے کا تعلق مذہب کے کسی عالم سے نہیں, یہ ایک سائنس کا مسئلہ ہے. یعنی مہینہ کیسے شروع ہوگا, سورج کی گردش کو متعین کرنا ہے تو وہ بھی فلکیات کے ماہرین کریں گے, چاند کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی فلکیات کے ماہرین کریں گے. اگر کوئی دین کا عالم فلکیات کا بھی بہت بڑا ماہر ہے تو ضرور رائے دے اس معاملے میں, لیکن یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. میں تو بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ جب سائنس اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ وہ آپ کو ایک کیلنڈر بنا کے دے دے اور یہ سینکڑوں ہزاروں سال کے لیے بن سکتا ہے, تو پھر آج راہ کرم یہ روز روز کا تماشا ختم کر دینا چاہیے. اب یہی بہتر ہے کہ جس طرح شمسی کیلنڈر بن گیا ہے, اس طرح قمری کیلنڈر بنا کے لوگوں کو اس تذبذب کی صورتحال سے نکال دیا جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر جو لوگ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں انہیں بڑی تکلیف پیش آتی ہے, یعنی نہ وہ چھٹیاں لے سکتے ہیں, یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ عید کب ہوگی, رمضان کب شروع ہوگا. اسی طرح سے ایک شخص کی بہن کے ہاں عید ہوتی ہے یا روزہ شروع ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کسی دوسری صورتحال میں ہوتا ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس میں سائنسی علم پر اعتماد کیا جائے اور اس کی بنیاد پر تمام فیصلے کیے جائیں, علماء کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ 30 تاریخ کو چاند نہیں دیکھتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر چاند دیکھنے سے ہی عید اور رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ 30 تاریخ کو جب 30 دن پورے ہو جائیں پھر آپ کی رویت ہلال کمیٹی کیوں نہیں بیٹھتی چاند دیکھنے کے لیے؟ ایک ہی جواب ہے اس کا, اور وہ یہ کہ سائنسی طور پر, علمی طور پر یہ طے ہے کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا ہو نہیں سکتا. یہ سائنسی علم ہے, یعنی قدیم زمانے کے علم نے فیصلہ کیا ہوا ہے, تو آپ نہیں بیٹھتے. یہی فیصلہ 29 کے بارے میں اگر آج کا علم کرتے تو پھر بیٹھنے کی کیا ضرورت؟
سو رویت حلال کمیٹی, یہ اسلامک اسٹیٹ میں اس کی کہیں اور مثال ہے یا اٹس اونلی ان پاکستان؟
اس طرح کی کمیٹی تو پاکستان ہی میں ہے, لیکن باقی دنیا میں ریاست کا نظم فیصلہ کرتا ہے, اور ریاست کا نظم ظاہر بات ہے کہ جس سے چاہے مشورہ کر لے. اس طرح کی کوئی کمیٹی جو خود فیصلہ کرتی ہے, جو علماء پر مشتمل ہے, یہ ہمارے یہاں ہی ہے, اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے. یہ کرونا کی وبا میں مزید واضح ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں علماء مسجدوں کی بنیاد پر ایک پیرلل ریاست قائم کر چکے ہیں, ریاست کے اندر ریاست. اسی وجہ سے جبکہ زندگی کو خطرہ تھا, ڈاکٹر چیخ رہے تھے, اس وقت بھی حکومت کو علماء کے ساتھ سیاسی مفاہمت کرنی پڑی ہے. یعنی یہ جو آپ نے ایک معاہدہ دیکھا ہے اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے, یہ سیاسی مفاہمت ہے, یہ علم کی بنیاد پر لکھا گیا معاہدہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس پر تنقید کی تھی کہ اگر اس کی بنیاد طبی ماہرین ہے تو سر تسلیم کم, اگر یہ سیاسی مفاہمت ہے تو زندگی اور جان پر سیاسی مفاہمت نہیں کی جا سکتی. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم اس کے لیے مجبور ہیں کیونکہ ہم نے مسجدوں کا نظم علماء کو دیا اور مسجد ایک بہت بڑی طاقت ہے, لہذا ایک ریاست کے اندر ریاست مذہبی بنیاد پر وجود میں آتی تھی.
یہ بڑی اہم بات آپ نے ہائی لائٹ کیا غامدی صاحب. ایک اس میں جسارت کروں گی سوال کرنے کی کہ ہم یہاں تو دیکھتے ہی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے پاکستان میں, مگر برطانیہ میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ بھی कंसेंसस नहीं था, अगरचे माइनॉरिटी में थे मुसलमान, लेकिन फिर भी सेंट्रल मॉस्क कुछ और कह रही होती थी, बर्मिंघम मॉस्क कुछ और कह रही होती थी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात, हम क्यों देखते हैं कि ईद पर जब सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए तो बैरून मुल्क भी बढ़ जाते हैं मुस्लिम्स, क्यों?
इसलिए कि वहां पर भी रियासत उलमा के पास है, यानी ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिस्तान में या अमेरिका में या इटली में या फ्रांस में हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके बिल्कुल बरखिलाफ अगर आप उन मुसलमान मुल्कों के देखें, जैसे मैं 10 साल तक मलेशिया में रहा, आप सऊदी अरब में देखें, आप इराक में देखें, मिस्र में देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो रियासत का नज्म है जो फैसला करता है। तो इस्लाम का कानून ये था कि जामे मस्जिद, जुमे की मस्जिद, ये रियासत के कंट्रोल में रहेगी। अगर ये रियासत के कंट्रोल में रहती, रियासत के जिम्मेदार वहां के लिए खतीब मुकर्रर करते या इस्लामी कानून के मुताबिक खुद खुतबा देते तो ये रियासत पे रियासत ना बनती। अब ये बन चुकी है, और जिन दूसरे मुल्कों में मुसलमान गए हैं, फ्रांस में गए हों या बर्तानिया में गए हों या अमेरिका में, वहां पर भी ये रियासत उसी तरह कायम हो गई है। यानी मुसलमान तो मस्जिदों ही की तरफ रजू करेंगे और अपने उलमाई से पूछेंगे, वहां पर भी ये नहीं हुआ कि कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन कायम हो गई हो। तो जहां जहां कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन कायम होगी वो गोया एक नीम सियासी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, तो फिर ये इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। इस्लाम ने इसे कम्युनिटी के या हुकूमत के सपुर्द किया था, इसको उलमा के सपुर्द नहीं किया था। ये बुनियादी गलती है जिसके नतायज हम पाकिस्तान में भी भुगतते हैं और गैर मुस्लिम मुल्कों में भी भुगतते हैं।
राइट गामदी साहब, जो एक सवाल पूछने का मसला है, क्योंकि हमने भी रिसेंटली भी ये देखा इस मामले पर, मसलन मालिक साहब ने अगर सवाल किया या और लोगों ने, तो थोड़ा सा नजर आया इनटॉलरेंस, लोग डरते भी हैं सवाल पूछते हुए। दीन के हिसाब से, खासतौर पे हमारे दीन इस्लाम के हिसाब से, क्या सवाल पूछा जा सकता है? क्या वजह है कि एक डर खौफ है कि कुछ लोगों को लगता है, अक्सर लोगों को लगता है कि हम सवाल भी नहीं कर सकते या सवाल करें तो आगे से फिर डांट पिट जाती है?
उसकी वजह यह है कि सवाल इल्म का जरिया बनता है। हमारे यहाँ मजहब को फतवे का जरिया बना दिया गया है। हमारे दीन में तो अल्लाह ताला ने सवालात सुने हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात सुने हैं। आपसे तो बाज मौकों पर सवाल किया गया और जुमे के खुतबे के दौरान में किसी ने कर दिया तो खुतबे को रोक कर आपने सवालों के जवाब दिए हैं। हमारी ट्रेडिशन यही थी कि हम सवाल सुनते थे। हमारा दीन इस्तदलाल और रीजनिंग पर मबनी है, तो हम सवाल से क्यों घबराएं? हम तो ये कहते हैं कि दीन ही है जो असल में हर सवाल का जवाब दे सकता है दीन से मुतल्लक। तो जब दीन से मुतल्लक हमारे पास कुरान है, हमारे पास सुन्नत है, हमारे पास रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात है और वो सब इल्म व अकल पर मबनी है, तो हमें सवाल का जवाब देने से गुरेज क्यों करना है? लेकिन यहाँ चूंकि रवायत ये बन चुकी है कि उलमा फतवा देते हैं, यानी वो जवाब नहीं होता, वर्डिक्ट होता है और उसमें कजा की, जैसे जज फैसला देता है, ये जहनियत कार फरमा होती है। तो जिस तरह तौहीन अदालत हो जाती है हमारे मुल्क में, इसी तरह तौहीन उलमा हो जाती है और फिर उसके बाद रद्द अमल भी होता है। तो मेरे नजदीक तो ये सारी बुनियाद ही ठीक नहीं है। एक आलिम दीन का सच्चा तालिब इल्म होता है, उसका काम यह है कि हौसले से बात करे, हौसले से बात सुने, लोगों को बात बताए। इल्जाम तराशी करना, तोहमत लगा देना, लोगों की नीयत पर हमलावर हो जाना, उनके मुहर्रिकात तय करना, ये हमारा कौमी मिजाज बन गया है। इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जो आदमी भी सवाल करता है, दीन के एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं उसकी बात सुनूं, समझूं और बहुत मोहब्बत के साथ उसको बात समझाने की कोशिश करूं। अगर इख्तलाफ भी हो जाए कोई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुदा की बनाई हुई दुनिया है, इस पे इख्तलाफात भी रहेंगे। हमें इख्तलाफात के साथ अच्छी तरह सलीके के साथ तहजीब के साथ जीने के आदाब सीखने चाहिए।
गांधी साहब, जो पहला सवाल मैंने किया था लास्ट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड एक और सवाल भी है। फॉर इंस्टेंस, हम जानते हैं आप हैं, दीगर कुछ और बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल उलमा हैं, जहां पे हर कोई वेलकम है, हर कोई सवाल कर सकता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर कोई सवाल करे तो इवन ऑन टेलीविजन ये कह दिया जाता है कि आपका एजेंडा है, आप लिबरल हैं, आप एक माइंड सेट से आए हैं, आप दीन के ही खिलाफ है. सो क्या सवाल पूछने वाला किसी और सोच का हो नहीं सकता? क्या किसी और सोच का हामिल इंसान नहीं दीनी सवाल कर सकता?
हर शख्स का हक है, सारी दुनिया को हमारे दीन के बारे में सवाल करने हैं. ये तो आप मुसलमानों की बात कर रही हैं, मसीहियों को करने हैं, बुद्धों को करने हैं, हिंदुओं को करने हैं, यहूदियों को करने हैं. हम तो एक दावत लेके, एक पैगाम लेके खड़े हैं. ये पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का पैगाम है. हमें हर एक को जवाब देना है. यहाँ किसी का कोई एजेंडा तलाश करना, किसी के मुहर्रिकात तलाश करना, किसी की नीयत देखना, ये हमारा काम ही नहीं है. ये तो अल्लाह का काम है, वो कयामत में देख लेगा. हमारे लिए तो सारी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है और मुसलमान हमारे ईमान के रिश्ते से भाई है. आप हो, मैं हूँ, कोई और हो, सब के सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखते हैं. सब काबिले एहतराम है. मुझे क्या हक है कि मैं ये कहूँ कि कोई किसी एजेंडे पर है या कोई इस मकसद के लिए बात कर रहा है. वो जिस पर भी हो, वो जाने, उसका परवरदिगार जाने. मेरा काम तो ये है कि मैं उसकी बात को देखूं, उसमें अगर कोई दलील की गलती है तो वो शाइस्तगी के साथ, तहजीब के साथ उस पर वाजे करूं. अगर कोई इख्तलाफ रह जाए तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये बताया है कि मैं इस कायनात का खालिक हूं. मैं अगर चाहता तो सारी दुनिया को एक ही राय पर ले आता, लेकिन मैंने ही इंसानों को सोचने की आजादी दी है और वो बहरहाल इख्तलाफ करेंगे. तो हमें इख्तलाफ के साथ जीना है. इस वक्त भी आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से रुखसत हुए 1500 साल होने को आ रहे हैं. अभी भी ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया आप पर ईमान ले आई है. यानी दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, अरबों इंसान आपको खुदा का पैगंबर नहीं मानते. तो क्या हम उन सब के पीछे लट लेके पड़ जाएंगे? नहीं, हमें सवालों का जवाब देना है, लोगों को मुतमिन करना है, हमें अपनी बात शाइस्तगी के साथ कहनी है, दूसरों की सुननी है. हमें रोक दिया गया है इससे कि हम लोगों की नीयत तय करने की कोशिश करें, मुहर्रिकात तय करने की कोशिश करें. सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इज्तनबू कसीरम मिना जन इन्ना बाज़ जन्ने इस्म. लोगों के बारे में इस तरह के गुमान न किया करो, ये गुनाह का काम हो जाया करते हैं. तो इसलिए ये रवैया ही बुनियादी तौर पर गलत है. ये मेरा या आपका काम ही नहीं है. हमें रीजनिंग पर, इस्तदलाल पर बात करनी है. चस्पी है हमें कि उसका एजेंडा है या उसके मुहर्रिकात है. ये तो अपने आप को खतरे में डालना है. अगर क्यामत में पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है तो हम गुनहगार होंगे कि हम एक मुसलमान भाई के बारे में या एक इंसान के बारे में बदगुमानी कर रहे हैं.
राइट. कोरोना पे अगर वापस आए तो कोरोना के साथ बहुत से लोगों ने फिर ये भी चहमगोइयां शुरू हो गई, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें या एक डिबेट कह लें कि एंड ऑफ टाइम की तरफ जा रहे हैं हम. आपको लगता है कि दुनिया एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जा रही है?
ये तो दूसरी बहुत सी जो रिवायात है या कुरान में बाज तसरीहात है उनसे वाज़ह ही है कि दुनिया खत्म होने की तरफ जा रही है. लेकिन इसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है. मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बहुत वबाएं आती रही हैं, यानी इससे बड़े पैमाने पर वबाएं फैलती रही हैं. कलकत्ते की टाउन को याद कीजिए, स्पेनिश फ्लू को याद कीजिए, सैयदना यूसुफ के जमाने के 7 साल के कहत को याद करें. यानी वो तो 1500 कबल मसीह की बात है. तो इसलिए ये बात ठीक नहीं है कि इस तरह की जो चीज हो तो हम उसके बाद ये क्या सराहियां करें. हमें क्यामत के बारे में, दुनिया के खात्मे के बारे में जो इत्तलात कुरान मजीद में दी गई हैं या रिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें बताई हैं वही बयान करना चाहिए. तो मेरे नजदीक उसमें सबसे बड़ी पेशींगोई वो थी जो रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और उसके अल्फाज ये हैं कि तुम देखोगे कि अरब के नंगे पांव नंगे बदन फिरने वाले चरवाहे इमारतों की बुलंदी में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और गुलामी खत्म हो जाएगी. ये दो चीजें अलामत करार दी थी हुजूर ने कि जब ये हो जाए तो फिर क्यामत करीब होगी. तो ये तो 1940 के करीब हो गया और उसके बाद दुनिया में क्यामत करीब ही है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन वो कितनी करीब है, یعنی اللہ کے ہاں جب لفظ قریب بولا جاتا ہے تو وہ ہمارے پیمانوں سے نہیں ہوتا. تو اس میں کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے, اتنی بات بتانی چاہیے جتنی قرآن میں بیان ہوئی ہے. مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو یافت کی اولاد ہے گوگ میگاگ, یہ دنیا پر پھیلنا شروع ہو جائیں گے. اب ان کے پھیلاؤ کا عمل 500 سال سے شروع ہو چکا ہے چنگیز خان کے حملے کے بعد, اور ابھی بھی جاری ہے. تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ قریب 500 سال ہیں, 1000 سال ہیں, اس میں ہمیں کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے, بس اتنی بات بتانی چاہیے جتنی قرآن حدیث میں بیان ہوئی.
قامدی صاحب, کیونکہ اب آگے رمضان شریف بھی ہے اور مشکل وقت بھی ہے اکنامکلی, پہلے پاکستان کو اتنا زیادہ سٹرانگ ملک نہیں ہے مگر اب اور چیلنجز ہیں, سو لوگوں کو کس طریقے سے ہیلپ کرنی چاہیے اس مشکل وقت میں, جب ایک وبا بھی ہے, اکنامک چیلنجز بھی ہیں, اور آگے پھر خیرات اور زکات دینے والا وقت بھی ہے, تو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟
توجہ مرکوز کرنی چاہیے ان لوگوں پر جو اس وقت معاشی جدوجہد میں اپنے کاروبار سے یا اپنی ملازمت سے محروم ہو گئے ہیں, ان کی جان پر بنائی ہے. باقی سب چیزیں اب ثانوی ہو گئی ہیں. اس میں ریاست کو بھی ادھر رخ کرنا چاہیے, جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے اخراجات کو کم کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. لوگوں کو بھی جو انفاق کی اللہ نے تعلیم دی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, اس کا اصل رخ اسی جانب رکھنا چاہیے. اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے.